औरत की ये जो खूबियां आप और मैं देख रहे हैं, सालेहा कानेता, इसमें कोई बुरी बात है? इसकी जगह ये लिखना चाहिए था कि औरत है जो बदतमीज हो, मुंह चलाने वाली हो, पाँव पटकने वाली हो, बस ऐसी औरतें होनी चाहिए। आप मुझे बताइए क्या ये औरत की इज्जत थी? एक भी तो ऐसी बात नहीं इसमें कही गई कि जिससे औरत की बुराई की गई हो। सालेहा होना बुरी बात है, कानेता होना बुरी बात है, हाफिजातुल गैब होना बुरी बात है, सारी अच्छी हैं। लेकिन इतना इस इशू को उछाला, सारे वेस्ट की हमदर्दियां मुसलमान औरत के साथ चली गई। मैंने पिछले साल जब सफीरुलजन्ना में या गालिबन जब भी पिछले सालों की एक तस्वीर में आपको सुनाई थी ये बात कि आज के दौर में वेस्ट ने हम पे जो हमले किए हैं ना, तीन हदफ हैं उनके, दो को छोड़ देती हूँ अभी। एक हदफ ये है कि मुसलमान औरत को ये एहसास दिला दो कि तुम ओप्रेस्ड हो, तुम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, तुम्हें बड़े दुख दिए जाते हैं, तुम्हारी कोई राय नहीं पूछी जाती। अभी आगे आयत में आ रहा है मारपीट की बात को, तो और ही बुनियाद बनाते हैं कि जी मुसलमान औरतें बड़ी ओप्रेस्ड होती हैं, मुसलमान औरतों पे बड़ा जुल्म होता है, इनको हक नहीं है, इनको जीने का हक नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। प्रैक्टिकली आप अपने खानदान पे नजर डाल लें, आप जितनी औरतों को जानती हैं पाकिस्तान में, 1,000 तो होंगी ना रिश्तेदार अगले पिछले, कितनी औरतों पे जुल्म हुए, कितनों को मार पड़ी, कितनों के शौहरों ने उनको ताने दी, कुछ भी नहीं है। सिर्फ चंद गिनती की बातों को मशहूर करके करते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम आगे भी जाएंगे तो बात समझ आएगी। इतनी बात क्लियर है, बेहतरीन खानदान है। आप कहेंगे कि खानदान की जरूरत क्या है? इसलिए कि किसी भी जगह ऑर्गेनाइजेशन के बगैर काम नहीं चलता, ये जहन में रखिएगा। सारे रिसोर्सेज हों लेकिन ऑर्गेनाइज ना हो ना, अब तो आप उन सारे रिसोर्सेज को जाया कर देते हैं। तो इस्लाम चाहता है कि मुआशरे की जो बेसिक यूनिट है, यानी घर बनता है ना, तो पहली ईंट वो सीधी रखेंगे तो अगली भी सीधी होगी, इधर की भी सीधी होगी, दीवार सीधी होगी। फैमिली इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। एक शादी की सूरत में एक घर की बुनियाद पड़ी। मेरा घर जो है ना, वो एक ईंट है इस सोसाइटी की, आपका घर दूसरी ईंट है, आपका घर, हम जितने साथी यहाँ बैठे हैं, हम सबके घर एक एक ईंट है जिन्होंने मिलकर इस सोसाइटी को डिवेलप करना है। अगर अब हम सबके घरों के अंदर सुकून भी है, इत्मीनान भी है, हर बंदा दूसरे से खुश भी है, कोई बदगुमानी नहीं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं है, तो हर घर में हो गया ऐसा, तो पूरा मुआशरा ठीक हो गया। आज वेस्टर्न सोसाइटी में खाना बेहतरीन, सड़कें बेहतरीन, बिजली नहीं जाती, पानी नहीं जाता, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, सफाई है, लेकिन खानदानी निज़ाम अपसेट है ही कोई नहीं, ब्रोकन फैमिलीज हैं। यानी मुल्क वेस्टर्न कंट्रीज देखिए, ये अंदर से खौफ ज़दा है इस वक्त, इनके लोग अब शादी नहीं करना चाहते, आपके इस मुल्क में शादी करने को लोग पसंद नहीं करते, कहते हैं क्यों लाइबिलिटीज लें, क्यों जिम्मेदारियां लें। हालांकि इस्लाम खानदान की बुनियाद एक शादी पर डालता है। पहली आयत याद कर लें सूरत निसा की, या अय्युहन्नास उत्तकु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा। दो दफ़ों उस आयत में तकवा की बात है, और एक मर्द से तुम्हें पैदा किया, फिर उससे उसकी बीवी को पैदा किया, ये अल्लाह ताला की शान है। और यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, देखिए आप कभी भी छोटी चीज़ को समझे बगैर बड़ी चीज़ नहीं समझ सकते। मसलन अगर आपको फील हो रहा है ना कि आपकी इस दीवार में सीलन आ गई है, तो आपको ज़रूर जाके अंदर से क्लोज सर्कटली वॉल्स चेक करने पड़ेंगे कि लीकेज कहाँ से है। बड़े बड़े प्रॉब्लम जो सोसाइटीज में दिखते हैं ना, उसकी वजह घरों में होती है। मर्द और औरत एक जोड़ा है, एक पेयर है, कपल है, अल्लाह ने इनको जोड़ा, और वो सारे राज बता दिए कि अगर शौहर बीवी एक दूसरे के लिए खुशी का जरिया है। यानी एक सवाल लिखिए कि औरत और मर्द आपस में एक दूसरे के लिए जरूरी क्यों है, क्या मिलता है इनको एक दूसरे से? तो पहली बात, जिस्मानी राहत और आराम। मर्द सारे दिन का थका हुआ घर आए, बीवी उसके आराम का ख्याल करती है। फिर आप देखिए कि शौहर बीवी में अल्लाह ने कशिश रखी है। जब इंसान बलूगत पे आता है तो जिस्म में एक खिंचाव पैदा होता है। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते के नाते से आसाब को सॉफ्ट किया है, आसाबी ठहराओ, यानी मसल सॉफ्ट हो जाते हैं, इंसान रिलैक्स फील करता है। फिर रूहानी इत्मीनान, मैं घर में हूँ, रात को कोई और भी है घर में मेरे साथ, मैं अकेली नहीं हूँ, ये भी एक कपल को आपस में मिलता है। फिर देखिए नफ्सियाती सुकून मिलता है, साइकोलॉजिकली, देखिए हर इंसान की तलब है कि उसकी किसी से दोस्ती हो। स्कूल में जाते ही सबसे पहले यही पूछते हैं किससे दोस्ती हुई, हम चाहते हैं हम किसी नए नेबरहुड में आए हैं तो हमें कोई साथ में नेबर में अच्छा साथी मिले, फितरी बात है। इसी तरह घर में भी एक औरत और मर्द का दिल करता है कि दोस्ती हो, और बेस्ट दोस्ती शौहर और बीवी की होती है, यकीन करें। अगर शौहर बीवी एक दूसरे से दिल की बात कह नहीं सकते और सुन नहीं सकते, ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल ठप्पा लगा हुआ है शौहर बीवी का, नफसियाती सुकून होता है। फिर आप देखिए, बुराई और फहाशी से बचने के लिए ढाल है, जो जिस्मानी तकाजे हैं अगर बीवी शौहर के नहीं पूरे करेगी तो मर्द बुराई में चला जाएगा। सेम थिंग है, एक मर्द अपनी बीवी की ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता तो आखिर कब तक फिर उस औरत के बुराई में पड़ने की बात होती है। फिर एक और भी दोनों का फायदा है कि गुनाहों से बचाव का सामान है। याद रखिए, अकेले इंसान पे शैतान बड़ी जल्दी हमला करता है, तन्हाई से बचा करें, क्योंकि फरमाया कि कुछ लोग हैं जब लोग उनको जहन्नुम में देखेंगे तो कहेंगे तुम तो बड़े अच्छे काम करते थे, हम तो खुद तुम्हें देखते थे। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे सामने अच्छे करते थे पर जब हम अकेले होते थे तो हम गलत काम करते थे। तन्हाई से बचना चाहिए, अपने बच्चों को भी अलोन होने से बचाएं, ये एक अलग इशू है। अब शौहर बीवी जब साथ जुए हैं तो एक बीवी गुनाह करेगी तो उसको पता चल जाएगा शौहर देख रहा है, और शौहर कोई गलत काम कर रहा है या देख रहा है या सुन रहा है या बोल रहा है तो बीवी देख लेगी, तो गैर महसूस तरीके से वो दोनों गुनाहों से बचाव का जरिया है। फिर एक सबसे बड़ा जो एक अपेरेंटली नजर आने वाला फायदा है, नई नस्ल का वजूद। इस्लाम में तो प्री मैरिज या आउट ऑफ वेडलॉक बच्चे का तसव्वुर नहीं है ना, आपकी साइंस इसको ओके कह सकती है, आपकी सोसाइटी इसको ओके कह सकती है, लेकिन शादी के बगैर बच्चे का वजूद में आना इलीगल एक्ट है। शादी के बाद एक ये नई नस्ल पैदा हो जाती है, ये एक बड़ी खुशी का सबब बनती है। फिर आप देखिए, आप फील करें, आपके अगर यंग बच्चे हैं और आप उनके शादी के एक्सपीरियंस से गुजरे हो, मेरी किसी माँ से बात हो रही थी तो जैसे वो जवानी का एक जोश होता है ना, बच्चे हैं कभी शोर मचाए, ऐसे ही लाड में घर में आए तो शोर मचा दिया, धन 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 धन, और सूखा रोब जिसको कहते हैं। तो मैंने कहा अब सुनाए, कहती अब तो वो बुरा ही नहीं, अब तो उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती, यानी घर में एक बीवी आ गई है ना बाहर से, तो अब बेटा ठंडा हो गया। फितरी तौर पे इंसान की जिंदगी इस तरह स्मूथ हो जाती है शादी के बाद। फिर इसी तरह से आप देखिए कि दोनों जहन मिलकर तरक्की की राहें खोलते हैं, आगे बढ़ना है, अब क्या करना है बेगम, इसके अगले साल हमारा क्या प्लान है, अब ये छोटा घर है चले हम 1 साल बाद इससे बड़े में चलते हैं, 5 साल के बाद हम अपना घर ले लेंगे, यानी दोनों का माइंड चलता है पॉजिटिवली, दोनों अपने फ्यूचर को बेहतर करते हैं। तो अगला फायदा नोट करें, 9 लिखा चुके हैं या 10वां है, और वो क्या है कि जब दोनों साथ आपस में एक दूसरे से सेटिस्फाइड होते हैं ना तो बच्चों की बेहतरीन तरबियत गाह बनता है वो घर, यानी इंसानी तरबियत गाह बन जाता है वो घर। आपके बच्चे हैं लेकिन वो एक माशरे के भी बच्चे हैं, जिस घर में शौहर बीवी के ताल्लुक में खूबसूरती होगी ना वहाँ बच्चे बड़े प्यारे होंगे, और अल्लाह जानता है इतने लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ है। ये ख़ास तौर पर दरसो तदरीस और पढ़ने पढ़ाने और ट्रिप्स ने मुझे तो अपने ख़ानदान से उठाकर एक वर्ल्ड लेवल के ख़ानदान पे दाखिल कर दिया। मैंने पंजाबियों के पास जाके भी रह के देख लिया, मैंने सिंधियों के पास भी देखा, मैंने पठानों को भी देखा, मैंने कराची वालों को भी देखा, मैरकालों को भी देखा, अल्लाह ने हर कल्चर के लोगों से मिलाया है। और मैंने ज़ाहिर है कि जब आप कहीं किसी से मिलते हैं तो आप उनके अंदर खाता देखते हैं, मैंने ये चीज़ देखी है कि हर कल्चर में जिस घर में शौहर बीवी बाशऊर हैं और आपस में उनका ताल्लुक अच्छा, उनके बच्चे बड़े अच्छे हैं, कामयाब बच्चे। आज भी आप कभी नहीं कह सकते, मैं मानूंगी भी नहीं किसी की बात कि वेस्टर्न बच्चे बड़े बुरे होते हैं जी, अमेरिका में रहने वालों के बच्चे अच्छे नहीं, यूरोप वालों के बच्चे बिगड़ गए, बाहर के मुल्कों में बच्चे बिगड़ जाते हैं, कतन ऐसा नहीं है। बिगड़ते उनके हैं जो खुद बिगड़े होते हैं, या उनको एहसास नहीं दौलत की धुन में है, कमा रहे हैं, बीवी भी मशीन बनी हुई है, शौहर भी बना हुआ है, बच्चों की बेबी सिटिंग कंप्यूटर कर रहा है या टीवी कर रहा है। अदरवाइज दोनों को मिलकर एक बच्चे की तरबियत का मौका मिलता है। और अल्लाह ताला ने एक और बड़ा फायदा जो बताया सूरह रोम में, मवद्दतम व रहमा, वुद आपने फरमाया कि दो मोहब्बत करने वालों के बीच में निकाह से बड़ी कोई चीज़ नहीं। कभी कभी आप गौर से सोचें ना, गैर बंदा किसी को ना सोच सकता इंसान, ना देख सकता है, जिसका तसव्वुर नहीं आपको हो सकता, सिर्फ दो बोल बोल कर आप उसके लिए सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं, कितनी बड़ी बात है। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने ये सारे मामला रखे। अब ये जो एक जनरल बात की है तो अब इससे थोड़ा सा, अभी हमने अल्लाह की दीवी बांट तो समझ ली कि जी मर्द कवाम होगा तो बीवी जो है वो सालिहा होगी, लेकिन अगर हम औरत के फराइज देख लें, मतलब एक औरत करे तो क्या करे, बस आज विमेन राइट्स वालों ने ये तक कह दिया कि जी बीवी पे कोई जिम्मेदारी नहीं है खाना पकाने की, मर्द नान नफके का मालिक है, वो पकी हुई रोटियां घर में लेकर, तो तुम्हें घर में क्यों बिठाना है उसने? हजरत फातिमा को और हजरत आयशा को कोई पकी पकाई रोटी तो बाहर से नहीं आती थी। मुझे याद है जब पहली दफा पकी पकाई ताजा रोटी के नाम पे एक रोटी बनी थी, आज भी मैंने बात की तो मेरी आंखों के सामने वो आ गई और उसका टेस्ट भी आ गया। बड़ी अजीब चीज थी कि पकी पकाई ताजा रोटी, पाकिस्तान में एक रोटी बनी थी सुराखों वाली नमक, फिर उसको भी तो गर्म करके घी लगा के लोग खाते थे, लेकिन बड़ी अजीब बात थी कि बाहर से रोटी आ रही है, हमेशा रोटी घर में ही बनती थी, राइट? तो आप देखिए कि औरत के लिए अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ सालेहा कानेता और उसके ऊपर जो बांट लगाई है ना, इन सबको देखे ना, तो सबसे पहली चीज़ है कि औरत को अपनी जिम्मेदारियों को समझने में ये सोचना है कि मैं अपने शौहर के सुकून का जरिया बनने जा रही हूँ। और सुकून मुख्तलिफ तरह से होता है, उसकी भूख मिटाकर उसके पेट को सुकून देना। जाहिर है कि भूखा शौहर घर आएगा तो खाना देगी बीवी, तो उसका सुकून मुतमईन हो जाएगा। फिर मैंने अपने आप को साफ सुथरा रख के और उसके आने से पहले घर को साफ सुथरा करके उसकी एथेटिक सेंस को सुकून देना। देखिए हम कोई बड़ी खूबसूरत चीज देखे तो हमारा मूड अच्छा होता है कि नहीं होता? हम किसी को अच्छे कपड़ों में देखे तो हम खुश क्यों होते हैं? क्योंकि हमें सुकून मिलता है। इसके बरक्स किसी को बुरे हुलिये में देखे और मुसलसल देखना पड़े तो कितना बोझल हो जाता है। तो बीवी का एक फर्ज है कि घर को इस तरह से मेंटेन रखे कि खुद को भी, ऑफ कोर्स घर दूसरे के लिए रहे लेकिन आपको खुद उसका सबसे पहले फायदा होगा, घर को साफ सुथरा रखे। कम से कम ऐसा जरूर हो घर सिंपल इजी टू यूज, लेकिन वो अस्तबल ना लगे, वो स्टोर ना लगे और वो शोरूम भी ना लगे कि इतना सामान भर दो कि आपकी जगह ही ना रहे और हर वक्त लड़ाई ये पड़ी रहे कि ये ना टूट जाए, ये ना खराब हो जाए, इसको ना छेड़ दें, उसको ना छोड़ दें। फिर उसके बाद आप देखिए मर्द की फितरी ज़रूरत को पूरी करे। ये इतनी बड़ी ज़रूरत अल्लाह ने औरत के हाथ में रख दी कि जिस पे औरतें जंगे तक करवा सकती हैं। अल्लाह ने मर्द के दिल में औरत की कशिश डाली, ये फितरी सी बात है। अल्लाह के नबी ने भी ये बात की और आप पढ़ चुके हैं सूरह आले इमरान में कि ज़ुज्जिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, आपने फरमाया कि हुब्बिबा इलैया, मेरी तरफ मेरी बीवियों की मोहब्बत है। आप अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते थे, ये कोई मर्द का ऐब नहीं है। अगर कोई ये कोई कहता है ना मेरे मर्द में बहुत ही ख्वाहिश है या मेरा मर्द बहुत ही इंटीमेसी चाहता है या मेरा मर्द मुझे तन्हाई में चाहता है और वो मुझे कहते मुझे टाइम दो, तो ये खूबी है, ये बुराई नहीं है। एक औरत का लाजमी फ़र्ज है ये कि वह अपने शोहर की ज़रूरत को पूरी करे। और मैं अक्सर ये बात शादियों के दरसों में जब भी बच्चियों को छोटे मोटे मैसेजेस दिए जाते हैं तो मैं यही कहती हूँ कि देखें शादी से पहले एक मर्द के पास क्या नहीं था। कपड़े भी माँ धो देती होगी, खाना भी खिला देती होगी, बहनें खिला पिला सब कुछ होता है, लेकिन जिस्मानी ज़रूरत नहीं पूरी हो रही थी। जिस औरत ने अपने मर्द की ज़रूरत में कमी बेशी की या उसका हक ना दिया तो ये काम फिर उसको गुनाह पे ले जाएगा। अल्लाह ने ये किस्म का औरत को टोकन दे दिया है। रोज़ा रखना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। आपको इतना घंटे भूखा रहना, प्यासा रहना, 12-20 घंटे रोजे, तो वो जो इबादत है ना, तो शौहर की ख्वाहिश को पूरा करना भी इबादत है। अल्लाह कैसा प्यारा दीन है कि कभी रोज़ों जैसी मुशक्कत में इबादत करवाता है तो कभी प्यार मोहब्बत ले दे के इबादत कराता है। आप देखिए सफाई करना इबादत है कि नहीं? अत्तहूर शत्रुल ईमान। तो जो काम भी इंसान करे दिल की खुशी से करे। कामयाब लोग वो होते हैं कि जो भी काम करें, चाहे उनको झाड़ू लगाने को दे दिया जाए, पढ़ाने को बिठा दिया जाए, बच्चों को देख रहे हैं आप कुछ काम को, उसको रोते हुए ना करें, बिलखते हुए ना करें, मरते मरते ना करें, बस कर दिया अब नहीं करना, अब मुझसे नहीं होता, मेरे से कोई उम्मीद ना रखे। खुशी करे, औरत खुशी महसूस करे, ये भी औरत का फर्ज है। आई फील प्राउड कि आई एम योर वाइफ, मैं आपकी बीवी हूं। एक आलिम की बात मैंने सुनी, वो किसी के साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जैसे शादी के बाद बीवी को मर्द के पास रहना चाहिए, ये भी एक लाजमी जिम्मा है। किसी ने कहा कि बीवी के हकूक नहीं पूरे करता शौहर, तो शौहर के बारे पूछा क्यों, कहा कि बीवी रहती नहीं पास, वो तो रहती महके में। तो फिर उस पर उन्होंने कहा कि मर्द अपनी बीवी की ये सारी जिम्मेदारियां पूरी करने का मुकल्लफ है, कब? जब बीवी उसके घर में रहे। बीवी माँ के घर में बैठी हो, वहां आपको मुतालबे कर रही है, तो वो चीज़ तो उसको मिली नहीं गरीब को जिसके लिए उसने शादी की थी। तो उन्होंने फिर उसमें कहते हैं कि अपनी बात बताई थी कि किस तरह मेरी शादी के बाद से अब तक मेरी बीवी शायद 3 दिन 4 दिन भी कभी अपने महके नहीं गई। क्यों? कि उसकी माँ ने उसको ये बात कही थी कि देखो बेटा तुम मेरे घर 100 दफा आओ, बट तुम देखो जब तुम अपने शौहर के घर में होगी तो तुम उसके कपड़े धोगी, तुम्हें नेकी मिलेगी, तुम उसके लिए खाना पकाओगे, एक दीन का काम करने वाला है, तुम उसकी मददगार होगी, तो जब तुम मेरे घर आके रहोगी तो तुम इन नेकियों से महरूम रह जाओगी। वो दिन और आज का दिन वो बच्ची जो है वो अपने मायके में साथ जाते हैं, साथ आते हैं। बात समझ रहे हैं ना? मैं ये नहीं अब कह रही कि जाना नहीं चाहिए। अच्छा, फिर सवाल जो उठा, सीधी सी बात है कि अपने बीवी होने को एक अल्लाह की ऑनर समझे और इसको इबादत समझे, फिर अच्छे तरीके से काम करें। और फिर उसके बाद देखिए, प्रेग्नेंट होना ये औरत के ऊपर लाजिम है। अगर ये कह दिया जाए कि शादी तो करनी है, बच्चे नहीं पैदा करने, ये भी नहीं है। फिर बच्चा हो गया तो उसको दूध पिलाना, ये औरत की जिम्मेदारी है। फिर बच्चे की परवरिश, पैदाइश, निगहदाश, ये सब औरत के जिम्मे है। बाप पैसे लाते हैं, बीवियां बच्चों की टेक केयर करती हैं, पढ़ाती हैं, लिखाती हैं। और इसके लिए क्या अल्लाह ने औरत को कोई सलाहियतें भी दी हैं? जी बिल्कुल दी हैं। नरमी, औरत के मिजाज में नरमी। जितना बच्चा माँ को सताता है, वल्लाही बाप को सता ले तो मेरा नहीं ख्याल कि दूसरा बच्चा पैदा हो। सच बताएं, इतना बच्चे सताते हैं। और माँ, अब कभी आपको अपना बच्चा जरा छोड़ के जाना पड़े अब्बा के पास, तो आने पे पता नहीं चलता बाप ज्यादा रो रहा है कि बच्चा ज्यादा रो रहा है, और मैस बाप ने ज्यादा फैलाया कि बच्चे ने। कर ही नहीं सकते, उन गरीबों के हाथ में ही नहीं है। औरत के अंदर फिर मेहरबानी है, फिर औरत में बर्दाश्त है, फितरी तौर पर होती है। ये अलग बात है, माहौल की तरबियत के असर ने बदल दिया आज बच्चियों को। फिर मुतासर हो जाती, इमोशनल होती है औरत, सेंटिमेंटल, टची है, जज्बातियत बहुत होती है, नज़ाकत है, लताफत है, हर वो खूबी। और आप देखिए, इसमें आधे नाम तो अल्लाह ताला के हैं। अल लतीफ़ भी अल्लाह ताला का नाम है, अल वदूद भी अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह सुबहाना ताला के अंदर वो खूबियाँ हैं। अल्लाह ने आपको तो क्या अपनी कुछ खूबियाँ मर्दों को दी हैं, कुछ को औरतों को दी हैं? मर्दों को अल्लाह ने अपनी खूबी क्या दी है? रज़ाकियत वाली, खिलाते हैं, पिलाते हैं, टेक केयरर है। औरत को अल्लाह ने अपनी खूबियों में जो खूबी दी है वो बच्चे की पैदाइश है। खालिक तो अल्लाह है, लेकिन पैदा औरत से करवाया जाता है, वो रब है। तो इधर तरबियत की जिम्मेदारी औरत को दी है, कितनी खूबियां अल्लाह ने बांट दी। अब सवाल पैदा होता है कि मर्द की जिम्मेदारियों में अगर 1 2 3 करके देखें क्या हालात है, तो सिंपल सी बात है कि मर्द को भी शुक्रगुजार होना चाहिए। कोई मर्द अपनी बीवी को अगर पाँव की जूती समझता है तो ये उसके जड़ होने की दलील है। अगर वो बीवी को ताना देता है तो उधर से आ गई, इधर से आ गई, तो वो जाहिल मर्द है। ये सारे आइडियल हालात की बातें। मोमिन मर्द, मोमिन औरत, मोमिन हस्बैंड, मोमिन वाइफ, जब ये हालात होंगे तो कोई इश्यूज ही नहीं बनेंगे। फिर मर्द की जिम्मेदारियों में दूसरी चीज़ के कि वो बीवी की A to Z जरूरियात को पूरा करे अपनी हैसियत के मुताबिक। फिर उसके बाद देखिए, औरत की तरबियत, यानी किस तरह की जहनी नशोनुमा मर्द की जिम्मेदारी है। सूरत अहज़ाब में ये पूरा एक टॉपिक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अल्लाह ताला ने कहा कि वज़कुरना, और जिक्र करो उन आयतों का जो तुम्हारे घर में उतरती हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजवाज के लिए तालीम का इंतज़ाम किया था। अब ये जो जुमला बोलने लगे ना, कुछ को बड़ा गैर मारूफ सा जुमला दिखेगा कि बीवी के पढ़ने पढ़ाने या बीवी की दीनी तालीम और तरबियत मर्द की जिम्मेदारी है। आज कोई आने ही दे दे तो बड़ी बात है। सबसे ज्यादा मसले आज हमारे आज के दौर के बिगड़े हुए माशरे में तब होते हैं जब किसी की बीवी पढ़ने लिखने आ जाती है, और जब किसी की बहू पढ़ने लिखने आ जाए फिर तो गम पड़ जाता है कि ये 20 रोटियां मुझे पकानी पड़नी है दोपहर की जो ये पकाती थी। हालांकि ये मर्द का जिम्मा है। अगर बीवी नमाज नहीं पढ़ती, मर्द से पूछा जाएगा। मर्द नहीं पढ़ता, बीवी को करना चाहिए कोशिश, लेकिन पूछा नहीं जाएगा क्योंकि मर्द मानते नहीं है, कम मानते हैं। बीवी नहीं पढ़ेगी, मर्द से पूछा जाएगा। तो मर्दों को तो खुद वो काम करना था, वो खुद ना करें, अगर बीवियां करें तो उनको तो इस पे शुक्रगुजार होने की जरूरत है। और ऐसे बहुत सारे मर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने रिकॉर्ड में मौजूद हैं कि जो अपनी बीवियों के इस पढ़ने लिखने पे शुक्रगुजार हैं कि ये बीवियां गईं और उन्होंने ये सीखा और उन्होंने वो सीखा और हमारे खर्चे कम हो गए। मैं तो, ये सफर बड़ा पुराना है, हमारी एक स्टूडेंट थी, यानी आप कहें कि अमेरिका के भी अमीर तरीन लोगों में से उनका नाम है, इतने उनके आला पोस्ट के ऊपर, डॉक्टरों के भी बड़े डॉक्टर थे। तो वो कहती थी कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इस 1 साल में क्रेडिट कार्ड पे कोई बिल ही नहीं आया। बेगम क्या बात है, अब आप वो ज्वेलर्स के पास नहीं जाती? ये डायमंड वालों का तो कोई बिल ही नहीं है, कोई चेक ही नहीं कटा आज तक, खर्चे ही कम हो गए। कुरान ऐसे गैर महसूस तरीके से आपको हर चीज़ से बेनियाज करता जाता है कि आपको इन चीज़ों की मुश्किल नहीं लगती है। तो मर्द की जिम्मेदारियों में औरत की हिफाजत भी है। हमारे कल्चर में माँ बाप के पास भेज दो, बच्चा आने वाला है जाओ माँ बाप के पास, वो बच्चा पैदा कराएंगे। हरगिज़ नहीं है, मैके जाना है, माँ बाप टिकट भेज रहे हैं, भेजते हैं, उनकी खुशी है, कोई एहसान नहीं करता किसी के सर पे। लेकिन मर्द इस तरह की चीप हरकतें नहीं कर सकते। शर्त यह है कि दोनों तरफ से जरूरियात पूरी हों। फिर आप देखिए कि मर्द को सख्त जान होना चाहिए। अच्छा, घर में चूहा आ जाए तो कौन मारता? किस किस के मियाँ मारते हैं जी? इधर चूहे आते ही नहीं है, आप चूहों को छोड़ के आ गए उदास। कॉकरोच आ जाए घर में, फिर इधर कॉकरोच भी नहीं आते, कितने बोरिंग है आप जी। मारा था यहाँ तो मुझे कुछ लोगों के बारे में गुमान है कि अल्लाह रहम करे सांप भी निकला है तो उन्होंने मारना है। लेकिन आप देखिए कि थोड़ा सा मर्दों को लेके चलना चाहिए। अब ये बात जो हम कह रहे हैं ना, रिजालु कवामुन, अब आयत में इसलिए इस पे टाइम ज्यादा आपको दे रही हूँ कि आप वेस्ट में रहते हैं, मैं भी यहाँ रहती हूँ। कल आपके बाहर के दोस्तों साथी स्कूलों कॉलेजों में और इधर उधर वाले जब कुछ पूछे तो शायद ये जहन में आ जाए कि इस्लाम बहुत रिजिड है, और ये देखिए औरत और मर्द की डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तो मैं आपको एक रिपोर्ट पढ़ के सुनाती हूँ जो कुरान की नहीं है, हदीस की नहीं है, एक सेकंड स्केल मादाम बवायर, एक इंग्लिश की बुक है जिनका एक छोटा सा इकतबास है 154 से 155 पेज पे, उसका उर्दू तर्जमा। उसने अपनी बुक में औरत और मर्द की साइकिक का डिफरेंस पेश किया है। सुनिएगा, बड़ी मजे की चीज है, मतलब रियलिटी है। आप ये नहीं कह सकते कि कुरान पढ़ के उसने ये बातें की हैं, लेकिन फितरत को देखें तो मर्द और औरत में ये फर्क होता है। एक तरफ मर्द लिख लें, एक तरफ औरत लिख लें। वो लिखती हैं कि मर्द क्या है, मसाइल को हल करने में ज्यादा बेहतर साबित होते हैं, इसके बरक्स औरतों की सोच में जज्बातियत गालिब होती है। ये रोता कौन है मसला सुनकर? तो अगर मर्द भी रोने लग जाए। फिर दूसरा, मर्दों में कुव्वत और बहादुरी ज्यादा है, जबकि औरतों में मर्द के मुकाबले में कुव्वत और बहादुरी कम होती है। तीसरा फर्क है कि मर्द में सख्ती, कुव्वत और अजीमत है, जबकि औरत में नजाकत, लताफत और नरमी है। चौथा फर्क है कि मर्द किसी भी मामले में इकदाम का हौसला रखते हैं, यानी इनिशिएटिव होते हैं, फैसला करके चल पड़ते हैं, जबकि औरत के अंदर इकदाम का हौसला मर्द के मुकाबले में बहुत कम है। पांचवा, मर्द में कायदाना सलाहियतें ज्यादा होती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज, जबकि औरत में मर्द के मुकाबले में ज्यादा नहीं होती। फिर छठा फर्क क्या है, मर्द मुश्किल और मेहनत तलब काम कर सकता है, औरत मुश्किल और मेहनत तलब काम करने से अक्सर गुरेज करती है, अवॉइड करती है। फिर सातवां फर्क है कि मर्द खुशी और गम की तस्वीर कुशी औरत से बेहतर कर सकता है, जबकि औरत खुशी और गम महसूस ज्यादा करती है, यानी मुतासिर जल्दी औरत होती है। अक्सर नाक किन की बहती रहती है आंसुओं के साथ, मर्दों की कि औरतों की? साथ रोते हुए हिचकियां कौन ले रहा होता है, औरतें के मर्द? चलिए, फिर आठवां, वो कहती हैं कि दिमागी साख्त में फर्क है मर्द का औरत से। मर्द का दिमाग औरत से 100 ग्राम ज्यादा होता है, यानी वेट कर ले ना वजन का, ब्रेन का, वो जिसको भेजा कहते हैं, तो मर्द का हैवी होता है। औरतों का दिमाग मर्दों के मुकाबले में छोटा होता है। अच्छा, यहाँ मुझे वो तस्वीर याद आ जाती है जो मैंने कभी दिखाई थी, आप लोग तो अब मुझे पता ही नहीं, खोलते नहीं, तो मैंने तो कितना कुछ साथ साथ रखा होता था कि दिखाने का बीच में, लेकिन वो खोलने बंद करने में वक्त का ज्यां का डर होता है। तो एक पिक्चर थी मेरे पास कि औरत का जो ब्रेन है ना, ये मल्टी ट्रैक है और मर्द का यूनी ट्रैक है। आप अभी आजमा ले अपने मियाँ को, जरा एक वक्त में दो तीन काम के वो कहते स्टॉप, वन बाय वन पहले एक बात पूरी करो। मर्द एक वक्त में एक काम करते हैं, आपको पता, और औरतें कितने करती हैं? चूल्हे पे हंडिया, वॉशर में कपड़े, और साथ जाके फोन पे भी बातें कराती हैं, है कि नहीं? मर्द इतने काम नहीं कर सकता। और वो तस्वीर बहुत ही मजे की है कि जैसे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, घूम फिर रहे हैं, तो मर्द के सारे ऐसे 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 सीधे सीधे जा रहे हैं, नींद आ रही है उनको, देखो सीधे ऐसे जा रहे हैं स्मूथली, और औरत का जो ब्रेन है ना, वो यूं भाग रहा है, यानी वो इतनी तेजी, इधर पकड़ा उधर लगाया, इधर किया इधर किया। तो फितरी तौर पर, क्योंकि देखिए औरत ने बच्चे को भी पालना है, उसने शौहर को भी देखना है, उसने ससुराल वालों को भी देखना है, और ये औरतें जितने काम एक वक्त में कर सकती हैं वो मर्द नहीं करते, ये एक औरत की खूबी है, क्योंकि उस औरत का काम मल्टी ट्रैक होता है जबकि मर्द का डिफरेंट होता है। फिर एक और फर्क है कि मर्द मजबूत होता है, असाबी कुव्वत ज्यादा होती है, मर्द की फेफड़ों की कुव्वत ज्यादा होती है, यानी इसके जो लंग्स होते हैं ना, ये स्ट्रांग होते हैं औरत की निस्बत। मर्द में भागने में तेजी होती है और वजन ज्यादा उठा सकता है, जबकि औरत कमजोर होती है, आसाबी यानी मसल्स, मसल्स जो होते हैं मर्द के मुकाबले में औरत के कमजोर होते हैं, इसके लंग्स की कुव्वत कम होती है, भागने में सुस्त रफ्तार होती है और वजन कम उठा सकती है। फिर दसवां फर्क है कि मर्द में अजम और इस्तकलाल पाया जाता है जो मंसूबों की तकमील के लिए जरूरी है। जब मर्द कोई काम कह दें तो फिर डट जाते हैं ना, जबकि औरत में कमी होती है। हम 10 दफा फैसले करके 11 दफा उसको बदलते हैं, है कि नहीं। फिर 11वीं बात क्या है, मर्द के पट्ठों की कुव्वत औरत से 13 गुना ज्यादा होती है। औरत के पट्ठों की कुव्वत मर्द के मुकाबले में कम होती है। मर्द जुरतमंद होता है, औरत में जुरत की कमी है। मर्द तबन आजाद होता है, औरत तबन आजाद नहीं होती। यानी औरत का मिजाज है कि वो बंद के रहे किसी के साथ, और मर्द के लिए जवान होते ही मसाइल नहीं होते, जबकि औरत के साथ हैज, निफास, हमल और इस तरह की तकलीफें ज्यादा होती हैं, जिसमें उसको जिस्मानी तौर पे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर एक और फर्क है, मर्द का हाफजा औरतों से अच्छा होता है। अभी औरत तो मुसलमान ही होगी ना जो इतना डिस्क्रिमिनेशन कर रही है जेंडर के नाम पे, जबकि औरत का हाफजा मर्दों से कमतर है। मर्द की इंतकामी सलाहियत ज्यादा है जब बदला लेने पे आ जाता है, जबकि औरत में ये कम होती है। अब आप बताइए कि ये 16 फर्क जो मैंने आपको एक गैर मुस्लिम के पढ़ के सुनाए हैं, तो क्या ये कुरान से पढ़ के लिए? सिर्फ ये बातें आपको इसलिए सुना रही हूं कि ये जो हमारे ऊपर एक सोच लगा दी गई ना कि इस्लाम ने औरतों को पीछे रखा है, तो ये हमारी लाइलमी की बात है। इस्लाम ने तो औरतों को हर जगह आगे किया है। और औरत के अंदर क्या डिफरेंट तजाद होते हैं, यानी औरत का मूड स्विंग्स होते हैं। फ्राइड नाम का एक बहुत बड़ा साइकाट्रिस्ट है, जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है वो फ्राइड को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो उसने मैरी बोनापार्ट को एक खत लिखा, और उसमें वो लिखता है कि 3 साल की तहकीक के बावजूद इसका जवाब मुझे नहीं मिल सका कि आखिर औरत क्या चाहती है। यानी उस गरीब को अभी तक जवाब ही नहीं मिला कि मेरी बीवी मुझसे चाहती क्यों है, क्योंकि ये मजमुए अजदाद है। अजदाद कहते हैं ना दो मुख्तलिफ चीज़ों का, यानी एक बीवी में, एक वक्त में, एक औरत में कई मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। मसलन आज़ादी की परस्तार है, औरत आज़ादी चाहती है, लेकिन साथ ही अदम तहफ़ से खौफजदा भी है कि अगर घर से निकल गई तो फिर सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगा। हाकिमाना इख्तियार की ख्वाहिश रखती है, मगर सुकून और करार उसको मर्द के ज़ेर साया ही मिलता है। इज्जत की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाना चाहती है, लेकिन जिंदगी के आम हकायक से समझौता भी करती है। यानी औरत में एक ही वक्त में बड़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है, और अल्लाह ताला ने ये इसलिए दिया है कि वो माँ, बहन, बेटी सब कुछ बन सके। तो बहरहाल बातें तो और बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि अपने घरों में सुकून लाएं। देखिए, मैं अपने ऊपर जो बात रखती हूँ वही मैं हमेशा सब साथियों को कहती हूँ, अगर हमारे घरों में सुकून नहीं है तो ना हम दीन का काम कर सकते हैं, ना हम दुनिया का काम कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ और अल्लाह रहम करे घर में लड़ाई करके आई हूँ, और जाना है तो लड़ाई होनी है, तो क्या मैं इतने सुकून से पढ़ा सकती हूँ? नेवर नेवर। इसलिए अकलमंदी से, हिकमत से अपने घरों में सुकून को रखें। आपके हस्बैंड सारे आइडियल नहीं होंगे, आप भी आइडियल नहीं है, मैं भी आइडियल नहीं हूँ, हम में से कोई आइडियल नहीं है। जो है ना उसको आइडियल बनाना है इंशाल्लाह। बस बने बनाए सबको नहीं मिलते, उसका अजर भी इतना नहीं होता। हमने अपने हस्बैंड को इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस खूबसूरत दीन की दावत देनी है। और मैंने देखा, और मेरा जुमला, मैं खुद जाती हूँ दूसरे शहरों में तो लोग मुझे साथ, उस्ताद साहब आपके साथ मेरी वो बात हुई क्या कि 5 साल बाद आपका मियाँ आपके पीछे लग जाएगा? तो मेरे मियाँ लग गए, वो तो 3 साल में ही लग गए थे। पीछे लगने से मुराद असल में मैं एक बहुत ही जोश के साथ एक जुमला बोलती होती थी कि आप दीन पे चलें, इंशाल्लाह 5 साल के अंदर अंदर आपके हस्बैंड और आपके बच्चे भी उसी लाइन पे पहुंच जाएंगे, ये मेरा जुमला होता था। तो अब मैं जाती तो वो जो सुनते हैं ना, तो फिर उसी से मुझे पता भी चलता है ये सुनते हैं, तो वो फिर अपने एक्सपीरियंस से सुनाते हैं कि कल तक मैं अपने हस्बैंड से छुप के आती थी, अब मेरे हस्बैंड खुद मेरे साथ बैठ के सुनते हैं। असल बात ये है कि आप चिखाएं, और इसके लिए आपको सब्र और हिकमत चाहिए। अब मैं घर जाती लड़ने लग जाऊं, पीछे हो जाए, मैं तो आज ये पढ़ रही हूं, आप में तो ये खराबी, आप में तो वो खराबी, आप तो मुनाफिक, आप तो सिगरेट पीते, आप फजर नहीं पढ़ते, आप तो मुनाफिक, तो मुझे बताएं कल वो मुझे घर रखेंगे? कुरान आपने पढ़ा और हमले सारे आपने उन पर जाके कर दिए। सब्र, जहां इतना सब्र किया वहां और सब्र। पहले अपना हिसाब लगाएं, इमोशनलिज्म बहुत नुकसानदेह होता है, याद रखें। मैंने जज्बाती लोगों से बड़े धक्के खाए हैं अपनी जिंदगी में। जब वो जज्बात में आते हैं वो सर के ऊपर आपको चढ़ा के बिठाते हैं, और जब उनके जज्बात ठंडे होते हैं ना तो वो नजर ही नहीं आते, गुम ही हो जाते हैं। हमेशा जज्बातियों से बचें, ठंडे सुकून वाले बने, रियलिटी बेस्ड बातें करें, ना बढ़ के किसी की तारीफें करें तो ना किसी की बुराइयां करें। अल्लाह से ये कहें कि अल्लाह मुझे जमाए रख, हक बात है मुझे उस पर जमा दे, मुझे अपनी जात को अच्छा करना है। फिर उसके बाद मैंने कुछ सबका ठेका तो नहीं लिया हुआ ना, कोई मेरी कोशिश से ठीक हो गया तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे बेहतर होना है। چند حدیثیں سن لیجئے اس موضوع پہ، بڑی خوبصورت ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے جو عورتیں اونٹوں پر سوار ہیں، عرب عورتوں کی طرف اشارہ فرمایا، ان میں سے بہتر قریش کی نیک عورتیں ہیں، کیونکہ وہ بچوں پر ان کی چھوٹی عمر میں بہت شفقت کرنے والی ہوتی ہیں اور شوہر کے مال کی خوب حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. تو کیا پتہ چلا، اچھی عورت بچوں سے پیار کرتی ہے، مارتی نہیں ہے بچوں کو اور شوہر کی حفاظت کرتی ہیں. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا، بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب حکم دے تو اس کا حکم بجا لائے، اور جب اسے الگ ہو کر کہیں چلا جائے تو اپنی عصمت کی حفاظت اور اس کے مال کی حفاظت کرے. پھر اس کے بعد آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی. پھر آپ نے ایک اور روایت میں فرمایا، اور اس حدیث نے بھی بہت ساروں کو نیکیوں سے روکا ہوا ہے. حالانکہ حدیث دیکھیے کتنی خوبصورت ہے. فرمایا کہ اگر عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے تو اس کو حکم ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے. اب آپ دیکھیے کہ یہ بھی ایک ہمارا ایک مس انڈرسٹوڈ ٹاپک ہے کہ شوہر کی ہر بات مان کے جنت میں پہنچ جائیں گے، کہ جو شوہر کے وہ کر لے عورت تو جنتی ہے. تو بھائی شوہر کیا کہہ رہا ہے، وہ آپ کو فوہش کا حکم دیتا ہے آپ کریں گی تو آپ جنت میں جائیں گی. شوہر بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو. بعض شوہر کہتے ہیں تو آگ میں جائے گی. کسی ایسے لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ جی حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، یہ ہے وہ ہے. یا یہاں مثال ہے، آپ قرآن پڑھنے آتی ہیں، کسی کے شوہر کہہ دے تو جا، میں تو تجھے اجازت نہیں دیتا، تو تو جائے گی بھی تو آگ میں ہی جائے گی، تو اب گلٹ ہو گیا. تو یہ بھی تو دیکھیں کہ شوہر کا معیار کیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا شوہر کو خوش کر کے جنت ملے گی، تو میں اکثر اس کے جواب میں پیار سے کہتی ہوں کہ وہ شوہر بھی تو اللہ کو خوش کرنے والا ہو. اس شوہر کو خوش کر کے، اس کی بات مان کے جنت کی دلیل تو مل سکتی ہے کہ جو خود بھی اللہ کو خوش کرتا ہے. تو شوہر سے تو اللہ ناراض ہے نعوذ باللہ، اور وہ شوہر کی بات مان کے آپ جنت میں چلے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل 2+2 کا فارمولا ہے، یہ کسی کو سمجھانا نہیں پڑتا. آپ سیدھے رہیں، اپنے کام اچھے رکھیں، اپنے گھر میں ٹھیک رہیے، اس کے بعد پھر اللہ پہ ڈال دیجئے. اور یاد رکھیں، قطرہ قطرہ گرتا ہے تو دل پہ اثر کرتا ہے. آج مسئلہ کہ ہمارے مردوں کا زندگی کا گول کمانا اور عورتوں کا گھر سجانا اور کھلانا پلانا رہ گئے. نہ مردوں میں پڑھنے لکھنے کا شوق ہے نہ عورتوں میں. حالانکہ ہمارے نبی کے صحابہ اپنے اور اپنی بیویوں کے تعلیم کا اہتمام کرتے تھے، یہ ایک الگ ایشو ہے. اس لیے ساری بات کو ریپ اپ کرتے ہیں اس بات پہ، گھروں کا سکون، دلوں کا سکون اور اطمینان اس میں ہے کہ آہستہ آہستہ یہ پیار اور محبت سے یہ دین ہمارے گھروں میں آ جائے. اور یاد رکھیے، نرم دمے جستجو، گرم دمے جستجو، نرمی سے کام کرتے رہے. جوں کو بھی مسلسل کام کرنے کا موقع دے نا تو وہ سارے سر کو گندا کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلسل کرتی ہے. آپ اپنا کام، اگر آپ کو یقین ہے نا یہ کام ٹھیک ہے، تو اس کی نہ تو پبلسٹی کریں نہ اس کے اشتہار چھاپیں. ہم پہلے جوش میں جا کے بڑی خوبیاں بیان کرتے ہیں، بعد میں ہم پھر خود ہی پھنس جاتے ہیں. ٹھنڈے ٹھنڈے وہ کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا. یہ تو آئیڈیل فیملی کی ذکر ہوئے نا، لیکن مجھے پتا بھی ہے اور اللہ کو تو پہلے سے پتا ہے کہ ہمیشہ حالات آئیڈیل نہیں رہیں گے، تب ہم اس کا اپوزٹ پڑھنے والے ہیں. لیکن میں چاہوں گی کہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں یا جی پلیز. بہت اچھا سوال ہے ان کا، شاباش. کیونکہ آج بات ہوئی ہے مرد کے قوام ہونے کی، تو یہاں ہم 2-3 فرضی سوال بنا لیتے ہیں کہ کیا عورت نہیں کما سکتی، عورت کا کمانا حرام ہے، یا پھر کیا کچھ جو بھی ہے. تو دیکھیں، میں اس کو ایک خوبصورت سے جملے میں سمیٹتی ہوں. اللہ نے عورت کو یہ گفٹ دیا ہے، تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، کہ اس کے کندھوں پہ کمانے کا بوجھ نہیں رکھا. جو عورتیں نہیں کماتی یا نہیں کما رہی، وہ اس گفٹ کو قبول کیے ہوئے. لیکن جن عورتوں میں خوبی موجود ہے، اگر وہ اپنے گھر کو سب کو ٹھیک رکھ کے اپنی اعلیٰ سکلز کے ساتھ کوئی ایسی جابز کرتی ہیں جس میں کوئی حد نہیں ٹوٹتی، جس میں حرام نہیں ہے، اور جس جاب سے آنے کے بعد وہ کرینکی ہو کر بچوں کو ڈانٹتی اور میاں سے نہیں لڑتی، تو ویل اینڈ گڈ، نو پرابلم، اس کی مرضی ہے. عورت کو کمانا ہو کما سکتی ہے، کوشش کرنی چاہیے. لیکن چونکہ ہمارا سیٹ اپ نہیں ہے نا، بچوں کے سبجیکٹ چوز کرنے سے ہی دیکھ لے آپ کی بچیاں، ان کو سبجیکٹ ہی وہ چوز کرائیں جو بعد میں وہ ٹیچرس بنے. عورت بیسٹ ٹیچر بنتی ہے. میں کہتی ہوں کہ اللہ نے ماں کا جو ایک روپ اور تربیت کا رکھا ہے نا، یہ فیمل ٹیچر میں یہ خوبی ہے. آپ کچن کے کاموں میں جا سکتے ہیں، آگے ہوم اکنامکس میں جا سکتے ہیں، آپ بچوں کی تربیت میں جا سکتے ہیں، گھر میں کھانے کی کوئی اچھی ڈشز بنا سکتے ہیں. یعنی جس حد تک ایک عورت اپنے گھر کو ساتھ مینٹین کر کے کماتی، اٹس اوکے. अल्लाह ने ये एडवर्स कंडीशंस के लिए औरत के पास हुनर रखे हैं। खुदा ना खास्ता मर्द को कुछ हो जाता है, वो हैंडीकैप हो जाते हैं। अब इन मुल्कों में तो आपको बहुत सहूलतें दिखती हैं, गवर्नमेंट दे देगी वो देगी, दुनिया में हर जगह ऐसा नहीं है। तो औरत कमा सकती है, लेकिन ये सच है कि औरत की कमाई में वो बरकत नहीं जो मर्द की कमाई में, ठीक है। तो ना इसको हराम के ना गलत के, लेकिन ये फिर जुर्म है कि बच्चों को दाव पे लगा के सारा सारा दिन घर से गायब रहना, और अपने बच्चे मेड्स के पास हैं और फिर बच्चे खराब हो रहे हैं। कई माएँ आज ही कहती हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ इसलिए बिगड़े कि हम उनको टाइम ही नहीं दे सके। जब वो छोटे थे हम सुबह निकलते थे, शाम को स्टोरों से अपने काम करके आते थे, हमारे आने तक बच्चे सो भी गए होते थे। पहले स्कूलों में रहते थे, बाद में दोस्तों के घरों में या बेबी सिटर्स के साथ, और टीवी और कंप्यूटर्स ने उनकी बेबी सिटिंग की, वो बच्चे दूर है। आपको मैंने वो इमोशनल वाक्या सुनाया, वो एक से ज़्यादा बार आप लोगों को तो नहीं सुनाया होगा, कि एक माँ जॉब करती थी तो घर आई तो बच्चा बड़ा सा उदास सा था, तो कहने लगा कि मामा एक सवाल पूछूं। तो कहनी पूछ लो, मामा तुम जहाँ काम करती हो आपको वहाँ 1 घंटे के कितने पैसे मिलते हैं? तो माँ को गुस्सा आ गया एकदम, क्यों पूछ रहे हो तुम ऐसी बात, क्यों पूछ रहे हो, कोई पैसे कोई काम करने होंगे। खैर बच्चे को डांट दिया तो बच्चा थोड़ा सा रोती हुई शक्ल बना के वहाँ से चला गया। खैर माँ गई घर में, कपड़े चेंज किए, थोड़ा सा एहसास हुआ उसको, जब रिलैक्स हुई तो कहती मैंने उसे ये तो पूछा ही नहीं कि ये पूछ क्यों रहे हो ना तुम। तो उसके कमरे में गई तो देखा तो वो तकिए पे सर रख के तो रो रहा है। तो माँ ने जाके उसको प्यार किया। खैर किस्सा मुख्तसर, कहने की अच्छा मुझे $20 मिलते हैं 1 घंटे के ना। फिर माँ को दूसरा सवाल करता है, कहते हैं मामा कैन आई हैव $10 प्लीज, मैं तुमसे $10 उधार ले सकता हूँ? तो फिर माँ को गुस्सा आ गया, कहने लगी तुम इसीलिए मुझसे पूछ रहे हो ना कि मैं कमाती हूँ तो तुमने मुझसे लेने हैं। फिर माँ उससे नाराज हो गई, फिर थोड़ी देर बाद गुस्सा आया, ठंडा हुआ, प्यार किया, तो कहेंगे ये लो पकड़ो, उसको 10 का नोट दिया उसने डॉलर्स का। उस पर फिर बच्चे ने पिलो के नीचे से एक चुड़ा मुड़ा $10 का और नोट निकाला, वो माँ के दिए हुए 10 में डाल के कहने लगा मामा कैन आई हैव 1 आवर फ्रॉम यू, ये लो मेरे से $20 ले लो तो मुझे 1 घंटा दे दो, आई वॉन्ट 1 आवर फ्रॉम यू। रियली ये अमेरिका की स्टोरी सुनाई थी मैंने। तो ये जुल्म है, यकीन करें ऐसे ऐसे आज के हालात है। ये मैं रात को एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, उसमें ये जो इस वक्त ये जो स्मार्टफोन ने आज हमारे ऊपर हमले किए हैं, मैंने इंशाल्लाह आप अगले किसी भी अपने लेक्चर में पूरा टेलीफोन पे बात करनी है कि इस फोन ने आज फैमिलीज को कैसे डिस्टर्ब किया है, बच्चे माँ बाप से कैसे दूर हुए हैं, शौहर बीवी कैसे दूर हो गए। बिलीव मी आज इस दौर में हम गुजर रहे हैं। आज से 5 साल पहले दावत तबलीग में ये इश्यूज नहीं आते थे जो आज हमें बोलने पड़ते हैं। वजह क्या है कि आज हमने खुद अपने बच्चों को अपने से दूर किया। मासूम फूल है ये, वल्लाह ये तो रूई के गोले, लेकिन हम इनको ऐसे खिलौनों में खिलाते हैं कि 11 घंटे उसमें मैं सुन रही थी, अगर मैं गलत ना कहूँ, एक बच्चा अमेरिका में 11 आवर्स अ डे आप स्क्रीन यूज करता है, चाहे वो कंप्यूटर स्क्रीन है, लैपटॉप स्क्रीन है, वो आपके फोन की स्क्रीन है या दूसरी स्क्रीन है। और उससे जो अब नई बीमारियां आपको पता है आंखों में पता नहीं क्या नाम था उसका, वो पैदा हो रही है कि इनकी सारी रेज आंखों में जाती है। कहते पहले डेस्कटॉप दूर था, फिर हमारी गोद में आ गया लैपटॉप की सूरत में, अब तो हाथ में ये जो स्मार्टफोन है वो तो यूं देखते हैं और इसकी सारी रेज आपकी आंखों में जाती है ये नेमत, इसमें कोई शक नहीं है। बट अब इसी के अंदर वो ऐप बनने लग गए हैं कि कैसे इसकी गलत चीजों से हम बच सके। तो याद रखिए इंसानों का नेमल बदल मशीनें नहीं हो सकती, ये तो हमारी ज्यादती होगी अगर हमने एक दूसरे के ऊपर इस बात को लिया। तो बहरहाल ये बहुत इमोशनल टॉपिक है, इस पे हमें गौर करने की जरूरत है। अब इसी आयत के अगले हिस्से पे चलते हैं क्योंकि आयत पूरी करेंगे हम इंशाल्लाह।